सतत केवल ज्ञान पाने तुझे मुझे सतत केवल ज्ञान पाने। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य कुंड स्वामी की, आचार्य गुरु विद्यासागर मुनि महाराज की। हमने अपनी अपने तक की यात्रा के दौरान बहुत सारी बातें समझ ली हैं और अंततः हम वहां आकर के खड़े हो गए हैं जहां से हमें इस बात का एहसास होने लगा है कि यहां इस संसार में हम जो जैसे जितने हैं उसकी जिम्मेदारी हमारी अपनी है। हम चाहें तो इस संसार से मुक्त हो सकते हैं, हम चाहें तो इस संसार में और रह सकते हैं। ये हमारी अपनी चॉइस है, हमारी मजबूरी नहीं है। हमने संसार चुना है इसलिए हम संसार में हैं। जिस दिन हम चाहेंगे इस संसार से मुक्त हो सकते हैं। इतना गहरा एहसास, इतना गहरा आत्मविश्वास हमारे भीतर आ जाना चाहिए, मैं समझता हूं इतने दिनों में आ गया हूं। यह बात जरूरी है कि ए स्टोन थ्रोन ऑन ए रिवर At the moment that is gone, but there are 100 ripples on and on. ये बात बिल्कुल जुटी है कि मैं जब कोई एक पत्थर नदी में फेंकता हूं तो at the moment उस क्षण तो लगता है कि वो डूब गया, लेकिन उसके बाद there are 100 ripples on and on, लेकिन इतनी लहरें उससे उठती हैं जिनको कि मैं भूल जाता हूं। अनादि काल से मैं ये करता आ रहा हूं। जो कुछ भी यहां प्रतिध्वनित होता है उसमें मैं गाफिल हो जाता हूं, ये भूल जाता हूं कि ये प्रतिध्वनि मेरे ही किए हुए कर्मों की है। मैंने ही कोई आवाज दी थी जो लौट कर मेरे तक वापस आई। मैं चाहूं तो आवाज देना बंद कर दूं, मैं चाहूं तो उस प्रतिध्वनि के साथ में अपने व्यवहार को बदल दूं। प्रतिध्वनि बहुत अच्छी मालूम पड़ती है। प्रतिध्वनि में अहंकार भी तो पैदा होता है, प्रतिध्वनि संकोच देने वाली है, लेकिन वो प्रतिध्वनि ओरिजिनली है किसके, ये हम भूले हुए हैं। क्योंकि अनादि काल से एक संस्कार हमारे साथ जुड़ा हुआ है, जैसे कि पानी दूध के साथ मिला हुआ है। कब से मिला हुआ? जब से दूध है तब से, जब से ये अपने संसार में है अनादि काल फ्रॉम वेरी बिगनिंग, तब से ये कर्मों से इस तरह से लिप्त है कि भूल ही जाती है कि कर्म अपना जो फल देते हैं तो मुझे क्या करना है। मुझे अपनी तरफ ध्यान देना है कि वो जो कर्म फल दे रहे हैं उसकी तरफ ध्यान, उस फल में गाफिल होना है या कि उस फल को जो पा रहा है और जो कर्म कर रहा है उस चेतना की तरफ ध्यान। कर्म और कर्म फल चेतना, इन दोनों चेतनाओं में संसारी प्राणी अपना पूरा जीवन बिता देता है। वे हैं पाणित मधिकंतानम नानम विंदन की ते जीवा, वे जीव जो प्राणों से अतिक्रांत हो गए हैं, पांचों इंद्री मन वचन गाय बल श्वासोच्छ्वास और आयु 10 प्राणों से जो मुक्त हो गए हैं, वे कोई जीव हैं जो ज्ञान चेतना को अनुभव करते हैं। ताकि हम तो आरंभ से अभी तक कर्म चेतना कर्म करते हैं, कर्म का फल मिलता है, फिर एक साइकिल बीच सर्कल एक पंचिनिटी हमारे साथ लगी हुई है, ऐसा सर्कल जो कि हमारे हाथ से बनता है और हम ही नहीं तोड़ते, और फिर उस चक्र में निरंतर। और हमें अब ये एहसास हो गया है कि हम जिस दिन चाहें उससे एक तरफ खड़े हो सकते हैं। कहते तो हैं, पढ़ते तो हैं कि को समय में कर्म ने आत्मा दावेश, पर ध्यान रखना को समय ने आत्मा ने कर्म दावेश। कभी कभी ऐसा होता है कि कभी कभी क्या अनादि काल से चला आ रहा है कि कर्मों ने आत्मा को दबा करके रखा है, लेकिन अब तो मैं अपना पुरुषार्थ जागृत करूंगा और इस बात को भी सार्थक कर दूंगा कि अब कर्मों को दबाने वाला आत्मा हमारे भीतर की उपादान की योग्यता जो है वो हमें जागृत कर ले। वो जागृत तभी होगी जब हमें ये एहसास होगा कि हम ऐसा कर सकते हैं। बिना कॉन्फिडेंस के ये चीज संभव ही नहीं। सम्यक दृष्टि इतना अधिक कॉन्फिडेंट हो जाता है अपने आत्मा के बारे में, वो आत्मा की अनंत शक्ति के बारे में, कि वो जानता है कि आत्मा की अनंत शक्ति के सामने कर्मों की शक्ति कोई मायने नहीं। वो भी कर्मों की शक्ति इतनी कि जब वो उदय में आते हैं तो हमें अपना फल देते हैं, लेकिन हमारी भी शक्ति है कि हम फल को जैसा चाहें वैसा ले सकते हैं। ये हम पिछले दिनों समझ चुके हैं। हम जब कर्म बांध लेते हैं तो हम चाहें तो उन कर्मों को सत्ता में पड़े पड़े भी हम उनको सड़ा सकते हैं, गला सकते हैं, उनका उत्कर्षण अपकर्षण, उनके रस को कमती और ज्यादा कर सकते हैं, उनको हम पूरी तरह से कन्वर्ट भी कर सकते हैं। ये शक्ति हमारे भीतर है, इतना हम समझ चुके हैं। और जब कर्म सत्ता में हमारे द्वारा जो बांधे गए हैं वे परिवर्तित नहीं होते और हृदय में आ ही जाते हैं, तो हम चाहें तो उस हृदय में भी समता भाव रख करके, उस हृदय में भी संक्लेश और अहंकार न करके, और उन कर्मों को बिना अपना फल दिए हुए जाने के लिए मजबूर कर सकते हैं। कोई व्यक्ति घर में आवे, आपने नहीं बुलाया तब आवे, तब की बात नहीं कर रहा हूं, बुला लिया है और आया है, मगर अब ध्यान में आ रहा कि गलती कर दी, तो अब क्या करो, आवे सो जा तक ने कहो के बैठो। उनने ये पूछो के कुछ खाओगे पियोगे, बिल्कुल उदासीन रहो उसके प्रति, फिर देखो अगली बार बुलाएं बुलाएं नहीं आए। जब ऐसा हम अपने रोजमर्रा के व्यवहार में करते कि मेहमान को बुला लें और उसका हम कोई स्वागत सत्कार नहीं करें, उदासीन रहें, तो अगली बार वो बुलाए बुलाए पर भी नहीं आता। ऐसे ही जब कर्मों का उदय आवे और हमें अपना फल देना चाहे तो हम उदासीन रह जावे, तो देखें फिर दूसरी बार कैसे आता है। वो अपनी संतान छोड़ के नहीं जा सकता है, हम आसानी से उसको जीत सकते हैं, यही तो हमें करना है। और ये ध्यान रहे कि ये कर्मों का उदय क्षणिक है, मेरे आत्मा का स्वभाव तो शाश्वत है। एक बार जब कहीं जंगल से बुद्ध चले जा रहे थे, उनके साथ आनंद भी थे, प्यास लगी होएगी, तो बुद्ध ने कहा कि आनंद जाओ वो सामने नाला बहता उससे पानी तो ले आओ। आनंद पहुंचे तो थोड़ी देर पहले उसमें से एक गाड़ी निकल के गई थी, तो सारा नाले का पानी गंदा हो गया। तो आनंद वापिस लौट करके आए और बुद्ध से कहा कि नाले में पानी तो है लेकिन बिल्कुल गंदा है। बुद्ध ने कहा कि थोड़ा इंतजार तो करते। बोले अरे गंदा पानी कैसे लाया जा सकता। बोले जाओ आनंद फिर से जाओ, अब ले आओ पानी। इतनी देर में आधे घंटे का समय बीत चुका था। आनंद फिर से गए तो देखा कि उसी नाले में स्वच्छ पानी। क्या हुआ उस मलिन था। वापिस पानी लेकर के आए तो आनंद से कहा बुद्ध ने कि ठीक ऐसा ही है, ये कर्म उदय में आते हैं तो थोड़ी देर के लिए मलिन करते हैं, लेकिन ये हमारे आत्मा को हमेशा मलिन नहीं कर सकते, ये ध्यान रखना। जैसे ही इनका उदय समाप्त होगा ये तो मर जाएंगे, निर्जरक होकर के नष्ट हो जाएंगे, रोने की क्या बात है। धैर्य रखो। कर्म के उदय में धैर्य रखना, ये आते हैं, सुख आता है, दुख आता है, सब कर्म आते हैं, लेकिन हम अपना धैर्य नहीं छोड़ें तो कितनी देर रहेंगे, क्रोध कितनी देर रहेगा। वासना काल 48 मिनट का है, तो उसके बाद तो आपको अपने स्वभाव में आना ही पड़े। ऐसा हम विचार कर लेवें अगर कर्मों के बारे में कि उदय में भी आ जाए और मैं शांत रह जाऊं तो ये अपना फल दिए बिना, आगे को नई संतान छोड़ करके जाए बिना जा सकते हैं। इतनी सारी चर्चा तो हम पिछले दिनों कर चुके हैं, अब थोड़ा सा अपने भीतर ये और हम देख लें कि कर्म कौन से लाना है, कितने वजन के लाना है, ये भी हम देखें। ऐसा ना हो कि ऐसा कर्म ले आवें कि जिसके नीचे हम दब जावें। कर्म तो आएंगे ही, क्योंकि मेरे अंदर मन वचन काय की क्रिया निरंतर चल रही है, कषाय भी कोई ना कोई मेरे भीतर है, इसलिए कर्म तो निरंतर आएंगे। अब मैं क्या करूं? अब मैं इतना ही कर सकता हूं कि चुनाव कर सकता हूं कि कौन से लाना है, कौन से नहीं लाना। आप कहेंगे इतना भी हमारे हाथ में है? बिल्कुल। हम अपने कमरे में दो खिड़कियां हमने कहा था बना सकते हैं हवा के लिए, लेकिन कौन सी कब खोलना है ये हमारे हाथ। और ये ध्यान रखना कि दोनों का रिमोट कंट्रोलर से कनेक्शन एक ही है, एक बार में दबाओगे तो एक ही खुलेगी। प्रशस्त और अप्रशस्त दो प्रकार के कर्म। अप्रशस्त कर्म तो सब घातिया कर्म तो अप्रशस्त हैं, जो अघातिया कर्म है उनमें प्रशस्त अप्रशस्त दोनों प्रकार के। क्या करना है, कौन से लाना है? पुण्य प्रकृतियां भी हैं, पाप प्रकृतियां भी हैं। हमारा ध्यान इस बात पर जाए कि हमें क्या करना है। लोभ करना है तो कौन सा लोभ करना? पैसे का लोभ करना है तो दुकान खोल करके बैठो, और अगर पीछी कमंडल का लोभ है तो किसी पीछी कमंडल वाले के पास बैठो। लोभ कौन सा करना है तो आपके ऊपर निर्भर करता है। आपको अगर फिल्मी गानों का लोभ है और दुनिया की बातें जानने का लोभ है, किसी बुक सेलर के पास चले जाओ। और अगर अपने आत्मा को आत्मा के बारे में जानने का लोभ है तो जिनवाणी के निकट आना। जिनवाणी का लोभ आपको बाकी लोगों से बचा सकता है। कौन सा लोभ करना है आपको? अपने आत्मा में जो कषायें उठती हैं उनको हम दिशा दे सकते हैं, ये हमारे हाथ की बात है। कषाय को भी दिशा देना, हम लोभ को दिशा। मायाचारी हम करेंगे, कौन सी मायाचारी हमें करनी है? हम मान करेंगे तो किस बात का, अपने आत्मा का गौरव करेंगे या कि शरीर की सुंदरता का मान करेंगे, ये हम पे निर्भर करें। हम ऐसे क्यों हैं, पतित क्यों हैं, इस बात पर गुस्सा करेंगे या कि संसार की चीजों पर गुस्सा करेंगे जो हमारे प्रतिकूल हैं। ये हमें अपनी कषायों को जैसी दिशा देनी वैसी दे सकते हैं। और ध्यान रखना, जैसे हम कषायों को दिशा देते हैं वैसे शुभ और अशुभ प्रकृतियां हमारे भीतर आती हैं और उनमें स्थिति अनुभाग। ठीक ऐसे ही जैसे कि आम का पेड़ लगाओ, जब उसमें फल आते जरूरी नहीं है, मैं देखूंगा कि कितना क्रोध करना है, किस क्वालिटी का क्रोध करना है। हाँ, क्रोध की भी क्वालिटी होती भी है, आप बड़ी मुश्किल में पड़ेंगे। क्वालिटी होती, मां तो रोज करती है गुस्सा, खेलने के लिए चला गया है, खाना वाना खाता नहीं है, बीमार पड़ जाएगा, चल पहले खा ले फिर उसके बाद खेलने जाना, हित के लिए नाराज होती है। अहित ना हो जाए इसके लिए गुस्सा करते हैं, और कई कई लोग तो दूसरे का अहित करने के लिए भी गुस्सा करते हैं। यही तो काली की है, यही तो वैरायटी है। कौन सा क्रोध करना है? दूसरे के हित के लिए करना, अपने आत्महित के लिए करना, या अपने अहित और दूसरे के अहित के लिए करना है? और कितना करना है, कितनी देर तक करना है, ये सब हमारे ऊपर निर्भर करता है। हम बदल सकते हैं। अभी यहां पर गुस्सा करूं, क्रोध का उदय यहीं पर भी चल रहा होगा, लेकिन अभी तो दूसरी चीज है। अगर क्रोध कर दूंगा तो मुझे प्रवचन का लाभ नहीं मिल पाएगा, मुझे जनवाणी सुनने नहीं मिल पाएगी। तो मुझे जनवाणी का लोभ है, मैंने अपने क्रोध को जनवाणी के लोभ में कन्वर्ट कर दिया। मैं चाहूं तो अपने क्रोध को बदल सकता हूं, लोभ में बदल सकता हूं। ये सब मेरे हाथ की चीज है, कषायों को, क्योंकि ये कषाय ही मेरे जो कर्म बंधते हैं उनमें ड्यूरेशन और पोटेंशियलिटी को निर्धारित करती है। कितने समय तक कर्म रहेंगे, किस पोटेंशियलिटी के रहेंगे, ये सब कषाय निर्धारित करती। मन वचन काय की क्रिया से तो सब नेचर डिसाइड होता है, क्वांटिटी डिसाइड होती है कि कितने आएंगे और किस क्वालिटी के आएंगे। लेकिन मुझे अपने साथ उनको कितनी देर तक रखना है और कब उनको वहां से हटा देना है, ये मेरे ऊपर निर्भर करता है। ऐसा जो है, यदि हमें समझ में आ जावे तो हम आसानी से इन कर्मों को जीत सकते, कर्मों के उदय को जीत सकते। उदय में आने से पहले जब सत्ता में पड़े हुए हैं हमारे साथ, हम उनको वहीं पर कम ज्यादा ये पर कल समझ चुके थे कि हम उनका अनुभाग और स्थिति कम करके भी समय से पहले उनको उदय में ला सकते हैं। हम उनमें कन्वर्शन भी कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन भी कर सकते हैं, उनको हम संक्रमित भी कर सकते हैं। हमारे हाथ में सारी चीजें हैं, पर उदय में आने के बाद हमें क्या व्यवहार करना है ये हमें समझ लेना है, क्योंकि गड़बड़ नहीं होती। हम सब कर सकते हैं भीतर, ये तो समझ में आता है, लेकिन उदय में आ जाते हैं। महाराज क्रोध का उदय आ जाए, हम क्या करें बताओ? आ जाता है उदय में, तब हमें क्या करना है? ये तो ठीक ऐसे ही है जैसे कि हम नहाने के लिए बाथरूम में घुसे और हमने वॉशिंग शॉवर जो है चालू कर दिया। अब उसमें तो जब ठंडा पानी गिरना शुरू हो गया, अब ठंडा पानी गिरना शुरू हो गया तो मैं बोलूं कि ठंडा क्यों गिर रहा है, या कि विचार करूं कि ठंडा मैंने क्यों भरा था ऊपर। उसी समय विचार करूं कि मैंने ठंडा भरा था इसलिए तो ठंडा गिर रहा है। और अब क्या करूं, अब ठंडा भोग लो या तो शांति से भोग लो, और अगर नहीं भोग पाते तो हट तो जाओ कम से कम, या कि शावर बंद कर दो। और इतना भी नहीं कर सकते हम, चाहे तो शावर इसी समय बंद कर सकते, नहीं बंद कर सकते तो हट जाएंगे, या कि थोड़ा सा ठहर जाएंगे, गीजर चालू कर देंगे दो घंटे में, फिर उसके बाद जो है पानी गर्म हो जाएगा, फिर हम उसका उपयोग कर लेंगे। कर्म के उदय में भी हम ऐसा कर सकते हैं। कर्म का उदय आवे और हम क्या करें, हम हट जावे वहां से, हमें नहीं चाहिए उसका फल, या कि हम उससे अनाशक्त रह जावे, हम उस समय समता धारण कर लेवे, या कि थोड़ा सा उस कर्म के उदय में शांत रह करके उसके प्रभाव को निकल जाने दें, अपने आप जो है वो हमारा कुछ भी बिना बिगाड़ किए चला जाएगा। कर्म के उदय में जो हम संक्लेश कर लेते हैं, या कर्म के उदय में जो हम अहंकार कर लेते हैं, दोनों चीजें, सुख मिलता है कर्म के उदय में साता मेदनी के, तो अहंकार कर लेते हैं कि मेरे से ज्यादा सुखी कोई नहीं है। और ऐसे ही जब कर्म का उदय आता है असाता का, तो अपने को दुखी मान लेते और संक्लेशित हो जाते हैं। यही तो संभाल की बात है कि मुझे जो भी सुख और दुख आएंगे उस समय मुझे विचार करना है कि ये मेरे ही बांधे हुए हैं, अब इनके साथ व्यवहार क्या करना, कितनी देर तक सुख का एहसास करना और कितनी देर तक दुख का एहसास करना, ये मेरे ऊपर है। एक हीरा लाल जी पंडित जी थे साड़ू मल में, तो वो सुनाते थे कि हम जब कर्म फिलॉसफी पढ़ाते थे, कर्म सिद्धांत पढ़ाते थे, तो एक गरीब आदमी सुनता रहता था पीछे बैठा बैठा। एक दिन उसके जीवन में ऐसा घटित हुआ कि खाने को कुछ भी नहीं रहा, उसने चोरी कर ली। चोरी कर ली, नया नया चोर था तो पकड़ा गया, लेकिन मजे की बात यह थी
कि जिसके यहां चोरी करी थी वो व्यक्ति भी हंस रहा था कि भैया तो कैसा आदमी है, चोरी भी तो करी लेकिन ठीक से नहीं करी, सोने चांदी के जवाहरात सब हीरे जवाहरात रखे हुए तो वहीं पर, और तेने हीरे जवाहरात नहीं चुराए, भूसा का बोरा चुरा के ले गए, भूसा का बोरा चुरा करके ले गए, तो उसमें से थोड़ा सा फटा सा सब भूसा गिरता गया उसके घर तक, सो पता लग गया कि कौन ले गया। तो उससे पूछा कि क्यों भैया तुमने ये भूसा का बोरा क्यों चुराया, तुम सोना चांदी चुरा सकते थे, हीरे जवाहरात चुरा सकते थे। तो उसने कहा कि हमने कर्म सिद्धांत पढ़ा है, चोरी हमारी मजबूरी तो थी उस क्षण में, क्योंकि पैसे नहीं थे खाने तक के लिए, पूरी फैमिली के लिए नहीं थे। मैंने पढ़ा है कि जितनी इंटेंसिटी से कर्म किया जाए उतनी देर तक रहता है और उतना ज्यादा फल मिलता है। मुझे इतनी आशक्ति नहीं थी, 3.5 रुपया चाहिए थे एक दिन के भोजन के लिए, सो 3.5 को वो घुसा को बोरा रुक जाए सो काम चल जाएगा, फिर कल की कर ले। अभी इतना पाप क्या मालूम है, देखो मेरा जीवन चलते हैं जिसमें आसानी से मैं इतना भी पाप करके अपना काम चला सकता हूं, मैं व्यर्थ ही अपने जीवन चलाने के लिए ढेर सारा कर्म ढेर सारा पाप करता हूं, और ये भूल जाता हूं कि इसका फल अंततः जो है मुझे ही भोगना पड़ेगा। अगर इतनी थोड़ी सी समझ हमारे भीतर आ जावे कि करना तो है, दो ही चीजें हैं, हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि मन वचन काय की क्रिया तो निरंतर हो रही है, कोई ना कोई कषाय हमारे साथ में लगी हुई है, क्या करें हम। तो थोड़ा सा सजग होकर के इस बात की बहरेदारी करें कि क्या हमें कितनी मन वचन काय की क्रिया करनी है, कितनी हमें कषाय करनी है। अगर ऐसा हमारे भीतर में ध्यान आ जावे और हम ये विचार कर लेवे कि कर्म का उदय आया है तो एक ना एक दिन समाप्त भी होगा, मुझे ज्यादा उसमें रंजायमान होने की आवश्यकता नहीं है, मुझे उसमें आशक्त होने की आवश्यकता नहीं है, तो मेरा काम बहुत आसान हो जाएगा। एक और बहुत छोटी सी घटना आपको कहूं और फिर अपन बैठेंगे, फिर चर्चा करेंगे कि कितने प्रकार के कर्म हैं और कौन कौन से कर्म हमें क्या क्या मुसीबत देते हैं, और हम उन कर्मों से बचने के लिए क्या उपाय कर सकते हैं। असल में कोई भी कर्म अपना जो उदय में आता है तो कितने काम करता है, हमें गाफिल करता है जब उदय में आता है। क्रोध आया तो हमारे ऊपर एक नशा छा जाता है, हम गुस्सा कर लेते हैं, गुस्सा करते हैं तो इतने नहीं है कि गुस्सा अकेले करने से काम चल जावे, आगे के लिए गुस्से का संस्कार निर्मित हो जाता है, और इतने नहीं होता है आगे के लिए और बात भी बिगड़ जाती है। और अगर गुस्सा का उदय आए और मुझे ये रहे ध्यान में कि मुझे कितना करना है, जितना भोग सकूं उतना ही करना है, मुझे ये ध्यान रखना पड़ेगा कि कितनी मेरी कैपेसिटी है, मैं कितना भोग सकता हूं उतने मुझे कर्म करना है, इससे ज्यादा मुझे नहीं करना है। वैसे तो मैं इन कर्मों का कर्ता भोक्ता नहीं हूं, पर क्या करूं, संसारी अवस्था में निमित्ताधीन हूं, निमित्त नैमित्तिक संबंध मेरे साथ इन कर्मों का लगा हुआ है, यही तो मैं समझ करके और उस प्रक्रिया को समझना चाह रहा हूं। वैसे मैं अपने शुद्ध स्वरूप में चाहूं तो स्थिर हो सकता हूं, लेकिन स्थिर रहा नहीं जाता, कुछ ना कुछ करना ही पड़ता, मन वचन काय की चेष्टा करनी पड़ती, कषाय करता हूं, ये सब वैभाविक स्थिति मेरी है, पर इससे बचने का उपाय मैं निरंतर कर रहा हूं ताकि और अधिक आगे संस्कार ना बढ़े, बात भी ना बिगड़े, और जो कर्म का संस्कार आदि काल का है वो भी जो है धीरे धीरे टूटता चला जाए, ऐसा मैं प्रयास करूं तो बहुत आसान है कि ये ब्रह्म कर्म भाव कर्म और लोक कर्म समस्त से मैं पर हो जाऊंगा। इतना जो किसी एक राजा के समय में उसके साथ घटित हुई थी, एकदम फैक्ट है, लगता तो है कि फैक्ट है, पता नहीं कहानियों में कुछ कहानियां फैक्ट भी होती हैं, कुछ ऐसे लिख दी जाती है, पर उनका उद्देश्य तो हमें संदेश देना ही होता है। तो राजा जो है अपना राज चलाता था और उसका मित्र साधु हो गया था, तो एक दिन उसने अपने मित्र से कहा कि राज तो आराम से चल रहा है, पर
पर कभी कोई विपत्ति आ जावे तो उसके लिए कोई थोड़ा सा मंत्र तो दे दो। जब सब जिंदगी का काम सुख से चलता है तब मंत्र मंत्र की जरूरत नहीं पड़ती, जब पीड़ा घेर लेती तो फिर मंत्र की जरूरत। तो पहले से ही क्या मैं इंतजाम कर ले कि अगर कोई पीड़ा आ जाएगी तो हमारे पास क्या मंत्र है। हम क्रोध करने से पहले उपाय कर लेंगे कि जब क्रोध आएगा तो हमें करना क्या है, नहीं तो हम गांव में जाएंगे फिर हम कर बैठेंगे, जब कर्म का उदय आएगा तो हम उसका फल लेने के लिए मजबूर हो जाएंगे। इसके पहले ही हम इंतजाम कर लेंगे कि कर्म का उदय आवे उसके पहले मुझे तैयारी कर लेनी, उसके पहले मुझे सजग हो जाना है, क्योंकि मेरे बांधे हुए कर्म उदय में जरूर आएंगे, ये तो पक्का है। तो उस राजा ने कहा कि कोई सूत्र हो तो दे दो। उसने कहा कि सूत्र तो दे देता हूं लेकिन बहुत भारी विपत्ति आवे तब उसका उपयोग करना, वैसे नहीं करना। विपत्ति आने पर करो, हम बस विपत्ति आ जाए तब कर लेना, ये तो पहले से कोई तैयारी, कोई तैयारी नहीं करना। मैं तो ऐसा मंत्र दे रहा हूं कि विपत्ति के समय काम आएगा, वही तुम्हें चाहिए था, अभी तो तुम सजग हो, पर विपत्ति के समय का फिर नहीं होना। मंत्र लिख करके दे दिया, राजा ने जो हिफाजत से अपने पास में रख लिया, हमेशा रखे रहता था। और एक दिन ऐसा हुआ कि इतनी विपत्ति आई कि राज्य छिन गया और दूसरे पड़ोसी राजा के सैनिक राजा के पीछे लग गए। भाग रहा था जंगल में और सामने देखा कि एक बहुत बड़ी खाई आ गई है और पीछे राजा के सैनिक, आवाज आ रही है कि वो दूर से आ रहे हैं। बहुत विपत्ति है कि अगर सामने का रास्ता बंद है पीछे मुड़ता हूं तो मुसीबत तो खड़ी हुई है, क्या करूं। याद आ गया उसे कि मेरे मित्र ने मंत्र दिया था, उसका उपयोग कर लेना चाहिए, अब तो भारी विपत्ति है क्योंकि बचने का कोई मौका नहीं है। निकाला उसने कागज, उसमें लिखा हुआ था कि दिस डे विल ऑल्सो पास, ये दिन तो निकल जाएगा, बस इतना सा मंत्र, और कोई बहुत बड़ा मंत्र नहीं था उसमें, सिर्फ इतना लिखा था कि दिस डे विल ऑल्सो पास, ये दिन भी निकल जाएगा। अरे सब निकल जाता है, मुझे थोड़ा सा धैर्य रखना चाहिए, कर्म इस समय बहुत तीव्रता से आया है, मुझे इससे बचने का एक ही उपाय है कि मैं शांत रहूं, विचार करूं कि ये सब भी निकल जाएगा, विचलित नहीं होगा। और रास्ता निकल ही आया, सैनिक पता नहीं कहां से रास्ता बदल के दूसरी जगह चले गए। राजा ने फिर अपनी कोशिश करके और धीरे धीरे पूरा राज्य अर्जित कर लिया, लेकिन जैसे ही राज्य अर्जित किया, विजय की खुशी मनाई जा रही थी, राजा राजगद्दी पर बैठा, उसका राज्य अभिषेक हुआ, और इसके पहले कि वो उस हर्ष में गाफिल हुए, उसे फिर से याद आ गया कि दिस डे विल ऑल्सो पास, ये दिन भी निकल जाएगा। और कहते हैं कि राजा भरे दरबार में उठा और वस्त्र आभूषण उतार करके फेंक दिए और जंगल के रास्ते पर निकल गया कि अरे जब हर दिन एक वो था जो विपत्ति में था वो भी निकल गया, ये जिसमें मैं सुख मान रहा हूं ये केवल ज्ञान पाने पूजो के सतत केवल ज्ञान पाने। बोले भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य गुरु विद्यासागर मुनि महाराज की। हमने अपने तक की यात्रा के दौरान बहुत सारी बातें समझ ली हैं और अंततः हम वहां आकर के खड़े हो गए हैं जहां से हमें इस बात का एहसास होने लगा है कि यहां इस संसार में हम जो जैसे जितने हैं उसकी जिम्मेदारी हमारी अपनी है। हम चाहें तो इस संसार से मुक्त हो सकते हैं, हम चाहें तो इस संसार में और रह सकते हैं। ये हमारी अपनी च्वाइस है, हमारी मजबूरी नहीं है। हमने संसार चुना है, इसलिए हम संसार में हैं। जिस दिन हम चाहेंगे इस संसार से मुक्त हो सकते हैं। इतना गहरा एहसास, इतना गहरा आत्मविश्वास हमारे भीतर आ जाना चाहिए, मैं समझता हूं इतने दिनों में आ गया हूं। यह बात सुधी है कि ए स्टोन थ्रोन ऑन ए रिवर एट द मोमेंट दैट इज गॉन बट देयर आर 100 पीपल्स ऑन एंड ऑन। ये बात बिल्कुल जुदी है कि मैं जब कोई एक पत्थर नदी में फेंकता हूं तो एट द मोमेंट उस क्षण तो लगता है कि वो डूब गया, लेकिन उसके बाद देयर आर 100 रिपल्स ऑन एंड ऑन। लेकिन इतनी लहरें उससे उठती हैं जिनको कि मैं भूल जाता हूं। अनादि काल से मैं ये करता आ रहा हूं। जो कुछ भी यहां प्रतिध्वनित होता है उसमें मैं गाफिल हो जाता हूं, ये भूल जाता हूं कि ये प्रतिध्वनि मेरे ही किए हुए कर्मों की है। मैंने ही कोई आवाज दी थी जो लौट कर मेरे तक वापस आई। मैं चाहूं तो आवाज देना बंद कर दूं, मैं चाहूं तो उस प्रतिध्वनि के साथ में अपने व्यवहार को बदल दूं। प्रतिध्वनि बहुत अच्छी मालूम पड़ती है। प्रतिध्वनि में अहंकार भी पैदा होता है, प्रतिध्वनि संकेत देने वाली भी, लेकिन वो प्रतिध्वनि ओरिजिनली है किसकी, ये हम भूले हुए हैं। क्योंकि अनादि काल से एक संस्कार हमारे साथ जुड़ा हुआ है, जैसे कि पानी दूध के साथ मिला हुआ है। कब से मिला हुआ? जब से दूध है तब से, जब से ये आत्मा संसार में है अनादि काल से, फ्रॉम वेरी बिगनिंग, तब से ये कर्मों से इस तरह से लिप्त है कि भूल ही जाती है कि कर्म अपना जब फल देते हैं तो मुझे क्या करना है। मुझे अपनी तरफ ध्यान देना है कि वो जो कर्म फल दे रहे हैं उसकी तरफ ध्यान, उस फल में गाफिल होना है या कि उस फल को जो पा रहा है और जो कर्म कर रहा है उस चेतना की तरफ ध्यान। कर्म और कर्म फल चेतना, इन दोनों चेतनाओं में संसारी प्राणी अपना पूरा जीवन बिता देता है। वे हैं पाणित मधिकंतानम नानम विंदन की ते जीवा, वे जीव जो प्राणों से अतिक्रांत हो गए हैं, पांचों इंद्री मन वचन काय बल श्वासोच्छ्वास और आयु 10 प्राणों से जो मुक्त हो गए हैं, वे कोई जीव हैं जो ज्ञान चेतना को अनुभव करते हैं। बाकी हम तो आरंभ से अभी तक कर्म चेतना कर्म करते हैं, कर्म का फल मिलता है, फिर एक साइकिल विशेष सर्कल, एक कंटिन्यूटी हमारे साथ लगी हुई है, ऐसा सर्कल जो कि हमारे हाथ से बनता है और हम ही नहीं तोड़ते, और फिर उस चक्र में निरंतर। और हमें अब यह एहसास हो गया है कि हम जिस दिन चाहें उससे एक तरफ खड़े हो सकते हैं। कहते तो हैं, पढ़ते तो हैं कि को समय ने कर्म ने आत्मा दावे से, पर ध्यान रखना को समय ने आत्मा ने कर्म दावे। कभी कभी ऐसा होता है कि कभी कभी क्या अनादि काल से चला आ रहा है कि कर्मों ने आत्मा को दबा करके रखा है, लेकिन अब तो मैं अपना पुरुषार्थ जागृत करूंगा और इस बात को भी सार्थक कर दूंगा कि अब कर्मों को दबाने वाला आत्मा हमारे भीतर की उपादान की योग्यता जो है वो हमें जागृत कर ले। वो जागृत तभी होगी जब हमें ये एहसास होगा कि हम ऐसा कर सकते हैं। बिना कॉन्फिडेंस के ये चीज संभव ही नहीं। सम्यक दृष्टि इतना अधिक कॉन्फिडेंट हो जाता है अपने आत्मा के बारे में वो आत्मा की अनंत शक्ति के बारे में कि वो जानता है कि आत्मा की अनंत शक्ति के सामने कर्मों की शक्ति कोई मायने नहीं रखती। वो भी कर्मों की शक्ति इतनी कि जब वो उदय में आते हैं तो हमें अपना फल देते हैं, लेकिन हमारी भी शक्ति है कि हम फल को जैसा चाहें वैसा ले सकते हैं। ये हम पिछले दिनों समझ चुके हैं। हम जब कर्म बांध लेते हैं तो हम चाहें तो उन कर्मों को सत्ता में पड़े पड़े भी हम उनको सड़ा सकते हैं, गला सकते हैं, उनका उत्कर्षण अपकर्षण, उनके रस को कमती और ज्यादा कर सकते हैं, उनको हम पूरी तरह से कन्वर्ट भी कर सकते हैं। ये शक्ति हमारे भीतर है, इतना हम समझ चुके हैं। और जब कर्म सत्ता में हमारे द्वारा जो बांधे गए हैं वे परिवर्तित नहीं होते और हृदय में आ ही जाते हैं, तो हम चाहें तो उस हृदय में भी समता भाव रख करके, उस हृदय में भी संक्लेश और अहंकार न करके, और उन कर्मों को बिना अपना फल दिए हुए जाने के लिए मजबूर कर सकते हैं। कोई व्यक्ति घर में आवे, आपने नहीं बुलाया तब आवे, तब की बात नहीं कर रहा हूं, बुला लिया है और आया है, मगर अब ध्यान में आ रहा कि गलती कर दी, तो अब क्या करो, आवे सो जा तक ने कहो के बैठो। उनने ये पूछो के कुछ खाओगे पियोगे, बिल्कुल उदासीन रहो उसके प्रति, फिर देखो अगली बार बुलाए बुलाए नहीं आए। जब ऐसा हम अपने रोजमर्रा के व्यवहार में करते कि मेहमान को बुला लें और उसका हम कोई स्वागत सत्कार नहीं करें, उदासीन रहें, तो अगली बार वो बुलाए बुलाए पर भी नहीं आता। ऐसे ही जब कर्मों का उदय आवे और हमें अपना फल देना चाहे तो हम उदासीन रह जावे, तो देखें फिर दूसरी बार कैसे आता है। वो अपनी संतान छोड़ के नहीं जा सकता है, हम आसानी से उसको जीत सकते हैं, यही तो हमें करना है। और ये ध्यान रहे कि ये कर्मों का उदय क्षणिक है, मेरे आत्मा का स्वभाव तो शाश्वत है। एक बार जब कहीं जंगल से बुद्ध चले जा रहे थे, उनके साथ आनंद भी थे, प्यास लगी होएगी, तो बुद्ध ने कहा कि आनंद जाओ वो सामने नाला बहता उससे पानी तो ले आओ। आनंद पहुंचे तो थोड़ी देर पहले उसमें से एक गाड़ी निकल के गई थी, तो सारा नाले का पानी गंदा हो गया। तो आनंद वापस लौट करके आए और बुद्ध से कहा कि नाले में पानी तो है लेकिन बिल्कुल गंदा है। बुद्ध ने कहा कि थोड़ा इंतजार तो करते, बोले अरे गंदा पानी है कैसे लाया जा सकता। बोले जाओ आनंद फिर से जाओ, अब ले आओ पानी। इतनी देर में आधे घंटे का समय बीत चुका था, आनंद फिर से गए तो देखा कि उसी नाले में स्वच्छ पानी, क्या हुआ उस मलिन का। वापिस पानी लेकर के आए तो आनंद से कहा बुद्ध ने कि ठीक ऐसा ही है, ये कर्म उदय में आते हैं तो थोड़ी देर के लिए मलिन करते हैं, लेकिन ये हमारे आत्मा को हमेशा मलिन नहीं कर सकते, ये ध्यान रखना। जैसे ही इनका उदय समाप्त होगा ये तो मर जाएंगे, निर्जरक होकर के नष्ट हो जाएंगे, रोने की क्या बात है। धैर्य रखो, कर्म के उदय में धैर्य रखना। ये आते हैं, सुख आता है दुख आता है, सब कर्म आते हैं, लेकिन हम अपना धैर्य नहीं छोड़ें तो कितनी देर रहेंगे, क्रोध कितनी देर रहेगा। वासना काल 48 मिनट का है, तो उसके बाद तो आपको अपने स्वभाव में आना ही पड़ेगा। ऐसा हम विचार कर लेवे अगर कर्मों के बारे में कि उदय में भी आ जाए और मैं शांत रह जाऊं तो ये अपना फल दिए बिना, आगे को नई संतान छोड़ करके जाए बिना जा सकते हैं। इतनी सारी चर्चा तो हम पिछले दिनों कर चुके हैं, अब थोड़ा सा अपने भीतर ये और हम देख लें कि कर्म कौन से लाना है, कितने वजन के लाना है, ये भी हम देखें। ऐसा ना हो कि ऐसा कर्म ले आवे कि जिसके नीचे हम दब जावे। कर्म तो आएंगे ही, क्योंकि मेरे अंदर मन वचन काय की क्रिया निरंतर चल रही है, कषाय भी कोई ना कोई मेरे भीतर है, इसलिए कर्म तो निरंतर आएंगे। अब मैं क्या करूं, अब मैं इतना ही कर सकता हूं कि चुनाव कर सकता हूं कि कौन से लाना है कौन से नहीं लाना। आप कहेंगे इतना भी हमारे हाथ में है, बिल्कुल हम अपने कमरे में दो खिड़कियां हमने कहा था बना सकते हैं हवा के लिए, लेकिन कौन सी कब खोलना है ये हमारे हाथ। और ये ध्यान रखना कि दोनों का रिमोट कंट्रोलर से कनेक्शन एक ही है, एक बार में दबाओगे तो एक ही खुलेगी। प्रशस्त और अप्रशस्त दो प्रकार के कर्म। अप्रशस्त कर्म तो सब घातीय कर्म तो अप्रशस्त है, जो अघातीय कर्म है उनमें प्रशस्त अप्रशस्त दोनों प्रकार के। क्या करना है, कौन से लाना है, पुण्य प्रकृतियां भी है पाप प्रकृतियां भी है। हमारा
दवाई खा लो ताकि
हमारा ध्यान इस बात पर जाए कि हमें क्या करना है। लोभ करना है तो कौन सा लोभ करना, पैसे का लोभ करना है तो दुकान खोल करके बैठो, और अगर पिछी कमंडल का लोभ है तो किसी पिछी कमंडल वाले के पास में बैठो। लोभ कौन सा करना है तो आपके ऊपर निर्भर करता है। आपको अगर फिल्में गाने का लोभ है और दुनिया की बातें जानने का लोभ है किसी बुक सेलर के पास चले जाओ, और अगर अपने आत्मा को आत्मा के बारे में जानने का लोभ है तो जुर्माने के निकट आना। जुर्माने का लोभ आपको बाकी लोगों से बचा सकता है। कौन सा लोभ करना है आपको, अपने आत्मा में जो कषायें उठती हैं उनको हम दिशा दे सकते हैं, ये हमारे हाथ की बात है। कषाय को भी दिशा देना, हम लोभ को दिशा, मायाचारी हम करेंगे कौन सी मायाचारी हमें करनी है, हम मान करेंगे तो किस बात का, अपने आत्मा का गौरव करेंगे या कि शरीर की सुंदरता का मान करेंगे, ये हम पे निर्भर कर। हम ऐसे क्यों हैं, पतित क्यों हैं इस बात पर गुस्सा करेंगे या कि संसार की चीजों पर गुस्सा करेंगे जो हमारे प्रतिकूल हैं, ये हमें अपनी कषायों को जैसी दिशा देनी वैसी दे सकते हैं। और ध्यान रखना जैसे हम कषायों को दिशा देते हैं वैसे शुभ और अशुभ प्रकृतियां हमारे भीतर आती हैं और उनमें स्थिति अनुभाग, ठीक ऐसे ही जैसे कि आम का पेड़ लगाओ जब उसमें फल आते हैं
किसी पापात्मा
वरना तो हम बहुत मुश्किल में पड़ेंगे। आप कह रहे हैं कि प्रशस्त बांधो और अप्रशस्त मत बांधो, दो प्रकार के कर्म होते, और यहां तो कह रहे हैं कि जो प्रशस्त पुण्य प्रकृतियां हैं वे भी तुम्हारे लिए है। आखिर बात क्या है? हम थोड़ा सा इसका देख लेंगे हिसाब, क्योंकि हमारे साथ मुश्किल तो ये है कि हम कषायों से अभी मुक्त नहीं हुए, मन वचन काय का हमने निरोध नहीं किया है, तब हम क्या करें? कोई ना कोई मन वचन काय की क्रिया और कषाय के द्वारा कर्म तो आएंगे, हमें क्या करना है? उन कर्मों से कैसे जूझना है, उन कर्मों को कैसे छटनी करनी है, किसे अपने पास रखना है, किसे हटा देना है? तो इसलिए समझना आवश्यक है कि पुण्य अगर है तो उसमें आचार्य भगवंतों का क्या दृष्टिकोण है, उन्होंने हमें क्या संदेश दिया है, क्या सम्यक दृष्टि का पुण्य ही है? सम्यक दृष्टि का पुण्य वो तो सातिशय पुण्य है, वो निरतिशय पुण्य नहीं है। तब फिर हम थोड़ा सा छह बातों का विचार करें पुण्य के बारे में। पहली बात, क्या पुण्य का आश्रय ये है? अगर पुण्य का आश्रय ये है तो पुण्य का आश्रय तो मंद कषाय की दशा में बनता है, तो क्या तीव्र कषाय करना शुरू कर दूं मैं? क्योंकि पुण्य का आश्रय मुझे करना नहीं है, तो मुझे पुण्य का आश्रय नहीं करना है तो मुझे मंद कषाय नहीं, मुझे तीव्र कषाय करना पड़ेगी, तब तो मैं पुण्य का आश्रय रोक पाऊंगा, क्योंकि पुण्य का आश्रय तो ये है नहीं। ऐसा काम तो ना बनेगा, पुण्य का आश्रय ये तो नहीं हो सकता, क्योंकि पुण्य का आश्रय तो मंद कषाय में होता है। और गोवर्धन जी कहते कि जब तक मंद कषाय नहीं होगा तब तक तत्व चिंतन नहीं होता, और जब तक तत्व चिंतन नहीं होगा तब तक वेद विज्ञान नहीं होता, और वेद विज्ञान नहीं होगा तो दृष्टि की निर्मलता नहीं, सम्यक दर्शन, और जब तक सम्यक दर्शन नहीं होगा तब तक ज्ञान और आचरण में सम्यकपना नहीं आता, और जब तक तीनों की समीचीनता नहीं होगा तब तक मोक्ष का मार्ग नहीं बनता, और मोक्ष का मार्ग नहीं बने तो मुक्ति की बात ही अलग, मोक्ष तत्व तो पहुंचना बहुत कठिन। इतना गहरा संबंध मंद कषाय का, तो मंद कषाय की अवस्था में पुण्य का आश्रय होता है, इसलिए पुण्य का आश्रय तो है नहीं कहा जा सकता, और जब आश्रय हुआ है तो बनेगा, तो पुण्य का बंध भी है नहीं कहा जा सकता। तो कहते पुण्य का संवर ये है क्या? कहते संवर और निद्रा तत्व तो ये होते नहीं, ऊंची अवस्था में ऊंचे गुणस्थान में जब कषायों से रहित होता है ये आत्मा, तब भी जो है तभी उसके पुण्य का संवर और निद्रा होती। सबसे ज्यादा पुण्य की निद्रा तो केवल भगवान करते हैं, तो पुण्य का संवर और निद्रा भी हुए नहीं। तो कहते पुण्य के कार्य हो हैं क्या? बड़ी मुश्किल हो गई, पुण्य के कार्य हो कैसे हो सकते हैं? मैं स्वाध्याय करता हूं ये पुण्य का कार्य है, मैं पूजा करता हूं देव दर्शन करता हूं ये पुण्य के कार्य है, ये भी है नहीं है। महाराज कहना क्या चाहते हैं? हे आचार्य भगवंत, हमारी समझ के बाहर हो गई ये बात। कहते तो हो कि ये है, और बताते चले जाते कि ये भी है नहीं, ये भी है। अच्छा ठीक है, तो पुण्य का फल है, तो पुण्य का फल तुझे शरीर मिला हुआ है जिससे कि जो इतनी बातें हो रही, इतनी बातें करने का जो मुझे मिला है, ये वचन योग मिला हुआ है, ये शरीर मिला, ये पुण्य के फल से मिला हुआ, इसको हे कैसे मान लू? तो कहना क्या चाहते? सब ही तो कैंसिल हो गया, पुण्य का आश्रय ये नहीं, पुण्य का बंध ये नहीं, पुण्य का संवर निद्रा है नहीं, पुण्य के कार्य ये नहीं है, पुण्य का फल भी ये नहीं है। तो कहते कहना क्या है आपको? कहते मुझे कुछ नहीं कहना है, दौलत राम जी ने जो कहा है सो वो जरा गौर तो करो कि पाप पुण्य फल माही, या पुण्य पाप फल माही, फर्क बिलखो मत। बस मुझे इतना ही कहना है कि पुण्य के फल में जो आसक्ति है वो हे है, न पुण्य का फल हे है, न पुण्य का संवर निद्रा हे है, जो पुण्य के फल में आसक्ति है वो हे है। और सम्यक दृष्टि पुण्य के फल में आसक्त नहीं होता, इसलिए सम्यक दृष्टि के द्वारा किया गया पुण्य हे नहीं। इतनी बड़ी बात आचार्य भगवंतों ने हमें समझा दी है। अब सवाल ये है कि इसको हम तात्कालिक उपाधेय मानेंगे कि नहीं मानेंगे? त्रैकालिक उपाधेय नहीं है, क्योंकि पहले कह चुका हूं कि ये कर्म
है और जब तक कर्म मेरे साथ में, चाहे पुण्य कर्म हो चाहे पाप कर्म हो, कर्म कोई भी मेरे साथ में रहेगा तब तक मुक्ति संभव नहीं है। इसलिए कर्म की अपेक्षा से तो मुझे अपने साथ इसे नहीं रखना है, लेकिन मेरा इससे काम सटता है, तात्कालिक उपाधि है। मैं नाव में बैठूं तो इस पार से उस पार जा सकता हूं, मैं यहीं से बैठे बैठे बिना नाव में बैठे उस पार नहीं जा सकता, इसलिए नाव में बैठता हूं उस पार जाने तक के लिए। फिर उसके बाद जैसे ही उस पार कदम रखूंगा नाव पीछे रह जाएगी, मुझे कहना भी नहीं पड़ेगा कि मैंने छोड़ी। लिखा हुआ है संबर और निर्द्रा के प्रकरण में, शुभ जोगस्य पवित्ति संवरणम कुनदि अशुभ जोगस्य, शुभ जोगेन निरोधो शुद्ध जोगेन संभवति। जब भी हमें अशुभ से बचना हो तो हमें शुभ को अंगीकार करना पड़ेगा। अशुभ से बचने के लिए शुभ को अंगीकार करना पड़ेगा और शुभ का निरोध हो जाएगा, करना नहीं पड़ेगा। अशुभ का तो निरोध करना पड़ेगा, अशुभ से तो बचना होगा, शुभ की तरफ जाना होगा, लेकिन जैसे ही हम शुद्ध की तरफ पहुंच जाएंगे तो शुभ तो पीछे छूट जाए। इतनी सी बात आचार्य भगवंतों ने हमें हमारे हाथ में, इतनी सी क्या, बहुत बड़ी एक ठो रसायन दे दी, बहुत बड़ा कीमिया दे दिया कि जूझो। कर्मों से तो जूझना है, लेकिन जरा संभल करके जरा सावधानी पूर्वक इनसे व्यवहार करो। अगर तुम इनसे सावधानी पूर्वक व्यवहार करोगे तो ये तुम्हारा बिगाड़ नहीं कर सकते, और अगर थोड़े चूक गए इन कर्मों के फल में, अगर गाफिल हो गए, तब तो फिर ये कर्म अपना स्वभाव इनका है कि ये बांध करके रखेंगे। इसलिए सावधानी की आवश्यकता है। तात्कालिक और त्रैकालिक उपाधे क्या चीज है, एक बहुत छोटी सी घटना से अपन समझ लें, और उपाधे उपादान और निमित्त क्या चीज है, बड़ी कठिन कठिन चर्चाएं बना रखी हैं, लेकिन कभी नीरज जी से मेरी चर्चा हुई, ये सारी चर्चा के दौरान बहुत बहुत क्लियर हुई ये चीज की कितना कितनी बढ़िया चीज है। जिसमें कार्य होवे वो उपादान है और जिसके सहयोग से होवे वो निमित्त। इतनी सी परिभाषा, कार्य जिसमें होवे सो उपादान और जिसके सहयोग से होवे। देख लो, जो कार्य के दौरान गायब हो जावे वो उपादान, या जो कार्य के कार्य रूप में परिणत हो जावे वो उपादान, और बाकी जो बचा रह जावे सो निमित्त। बनाओ रोटी, बनाओ, कैसे बनती रोटी, आटे से बनेंगी, चकला ले आना पड़ेगा, बेलन ले आना पड़ेगा, और आग जलाना पड़ेगी, चूल्हा लाना पड़ेगा, खुद बैठना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। ठीक है, बना रहे हैं, बैठे हुए हैं, अब देखेंगे कि उपादान क्या है और निमित्त क्या क्या है। जब रोटी बन जावे तो जरा गौर से देखो कि क्या क्या बचा। कहती चकला ज्यो कहते हो, बेलन ज्यो कहते हो, हम बेलने वाले ज्यो कहते हो, आगे ज्यो कहते हो, थोड़ी सी जल गई है, बाकी चूल्हा ज्यो कहते हो बचा है। आटा कहां चला गया, आटा गायब है, आटा उपादान है, रोटी का बाकी सब निमित्त है, और झगड़े की बात नहीं जाए। फौरन पहचान गए कि ये आटा कहां गायब हो गया, जो गायब हो गया, जो प्रगमन कर गया है रोटी रूप में, वो उपादान है और बाकी सब निमित्त है। दृष्टि निमित्त पे नहीं देना, उपादान की तरफ देना, तो अहंकार नहीं आएगा कि मैंने बनाई है रोटी। तुम क्या बना पाओगे, आटे के बिना बनती नहीं है, बनी आटे के द्वारा। इतना सीधा सीधा हो। तात्कालिक और त्रैकालिक उपाधे क्या है, तीन बेटे हैं एक माँ के, माँ बुलाती के खाना बन गया है, आओ तो खा लो, तो पहला वाला फौरन पानी से हाथ धोकर के भीतर आ जाता, दूसरा वाला आवाज देता कि अरे भाई साबुन कहाँ रखी हुई है। अरे पहले वाला इतना जल्दी क्यों आ गया, उसके हाथ में साबुन लगी थी, उसने पानी से धोया और भीतर आ गया, उसे पानी उपादे साबुन ही है। और दूसरा वाला कह रहा है कि साबुन कहां है भाई, मिट्टी तेल हाथ में लगा हुआ है, तो मिट्टी तेल अभी उसके लिए है, साबुन उपादे है जो उसके लिए पहले हे थी, देखना। और तीसरा वाला कहता कि मिट्टी तेल कहां है, ऑयल पेंट लगा हाथ में, ऑयल पेंट छुटाना है तो मिट्टी तेल उपादे है, और अगर मिट्टी तेल छुटाना है तो साबुन उपादे है, और अगर साबुन लगी है तो पानी उपादे है। क्षण भर के अंदर जिसे हे है वही उपादेय हो जाता है। ये सब तात्कालिक उपादेय हैं और ये धीरे धीरे त्रैकालिक उपादेय क्या है वो तो मेरा अपना आत्मा का स्वभाव है। मुझे अगर विभाव में जाना पड़ता है तो ये ध्यान रखूं कि विभाव तो हे है लेकिन उसमें से चुनाव मुझे कर लेना है, मेरा काम जिससे सटता है उससे ग्रहण कर लेना, बाकी को मुझे छोड़ देना। इतनी सीधी सीधी सी बात है, हम थोड़ा सा इस चीज को समझें। कर्म के बंध और उदय के बारे में जो हमारी अज्ञानता है वो हमें भटकाती है, जो हमारी गाफिलता है, हमारा मोह है वो हमें भटकाता है। पहले दिन हमने आपसे यही बात कही थी कि कर्म के बारे में हम नहीं जान पाते हैं, हमारी गाफिलता, हमारा अज्ञान और हमारे पुरुषार्थ की कमी, यही चीजें हैं जो कि हमें निरंतर इस विशेष सर्कल में डालती रहती हैं। निरंतर ये कर्म का चक्र जिसे हम अपने हाथ से चलाते हैं और हम इसे तोड़ नहीं पाते हैं। हम थोड़ा सा गौर करें तो हम इसे आसानी से तोड़ सकते हैं। एक आखिरी छोटी सी बात आपसे कहूं और फिर विश्राम करेंगे। फिर 28 तारीख से आप जो भी चाहेंगे वो होगा, आपने चाहा है, पर अभी दो दिन तो क्या होगा मेरे ख्याल से कोई नहीं जानता कि क्या क्या होगा, जो होगा वही होगा और उससे ज्यादा क्या होगा। पर इतना सब जानते हुए भी कल क्या होगा महाराज, कल सवेरे का कह दू, क्या 8:30 बजे का कह दू, जो होगा वो हम नहीं जानते हैं इसलिए हम इतने आतुर हैं। पर देखें तो किसी दिन क्या, देखें क्या होगा, बड़ा अनसर्टेन है। अनसर्टेनिटी इज सर्टेन, मैं हमेशा कहता हूं कि अनिश्चितता बिल्कुल निश्चित है। यहाँ पर कुछ भी हम सर्टेन तो नहीं कर सकते, हम क्या जानते हैं कि क्या होने वाला है घटित, हम देखेंगे क्या होता है। अभी एक छोटी सी घटना आपसे कहूं, कैसे हम अपने मोह की वजह से, कैसे हम अपनी अज्ञानता की वजह से कर्म बांधते हैं और फिर फंस जाते हैं। हमें थोड़ा सा ये संदेश देगा ये उदाहरण। एक युवक था, उसने सुना कि एक बहुत पहुंचे हुए बाबा जी हैं। किसी का पहुंचा हुआ मालूम क्या होता आज के समय में, पहुंचे हुए हैं मतलब कि कोई संसार की चीज जाओ सो हाथ धर देंगे से मिल जाएगी, वो पहुंचे हुए हैं। जिन्हें अपनी आत्मा का दर्शन कर लिया और हमें अपनी आत्मा का दर्शन करा देंगे वो ज्यादा पहुंचे नहीं, तो कहीं बैठे नहीं है किसी उसमें, उनका अतः पता नहीं लगता। अतः पता तो उनका लगता है जिनके पास जाने से और कुछ संसार की चीजें मिल जाती हैं, आशीर्वाद दे देंगे तो कारें दौड़ने लगेंगी और धंधा बढ़िया चमक जाए। पिछली बार तो धर दो महाराज और तो सब ठीक, भले ही बात जीवों की रक्षा करने की है तो वही की रक्षा नहीं हो पाए मगर हमारी हो जाए। तो उन्होंने सुना कि बहुत पहुंचे हुए बाबा जी हैं, तो युवक पहुंचा उनके पास में, सुन रखा था उन्होंने कि बाबा जी के पास में पारस मणि है,